समान, जिस तरह आपने हमसे बात की और हमने आपको भी बताया था कि सफ़ीर मोहतरम आएंगे, तो आपने भी हमें कहा कि आपने ये पूछना है, उनसे ये कहना है। बात तो वो सारी मुश्तरक ही, हमने तो वही मुश्तरक बात करनी है जो कम्युनिटी बात कहना चाहती है या वो जो बात सुनना चाहती है, वो जो हमारी जेन्युइन बात होती है उसी को बात को लेकर हम चलेंगे। उनसे हमारा कोई सियासी प्रोग्राम तो नहीं होता, इन्फॉर्मेशन का समान ये प्रोग्राम है। सफ़ीर पाकिस्तान जो है वो एक हद तक उनकी होती है, वो बात कर सकते हैं, कोई सियासतदान तो होते नहीं हैं, ना उनका सियासत से ताल्लुक होता है, वो हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे होते हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी होती है उसी को लेकर उन्होंने चलना होता है। तो ये सारी बातें हमें खुद समझ होनी चाहिए, तो जब हमें खुद समझ होगी तो फिर सवाल करने में भी हमें कोई मुश्किल जो है वो पेश नहीं होगी। आप भी अगर कोई सवाल करना चाहें तो आपके लिए भी कोई मुश्किलात पैदा नहीं होंगी, क्योंकि वो हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदा होते हैं, वो अपने पाकिस्तान हाउस में रहते हैं, अपनी पाक अम्बेसी में जो है उसको हेड करते हैं। तो समझ, सबसे पहले हम सब जो है वो सफ़ीर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा करेंगे कि जो हमारा मुतालबा था, ये जो कैटेगरी सी में डाल दिया गया, उन्होंने जो क्विक एक्शन लिया, और मैं पूरे उनकी जो, क्योंकि ये टीम के कप्तान हैं और हमारे अवामी सफ़ीर भी हैं, इनकी पूरी टीम ने जो है वो क्विक एक्शन लिया अपने कप्तान की जो ज़ेरे निगरानी, इस पर समाइना बात करेंगे। समाइन इस वक्त इज़्ज़त मआब सफ़ीर पाकिस्तान अहमद फ़ारूक साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अहमद फ़ारूक साहब, हम अपनी पूरी टीम के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं।
जी, बहुत शुक्रिया राजा साहब, हमेशा मुझे आपके प्रोग्राम में आके बहुत खुशी होती है।
सफ़ीर पाकिस्तान, सबसे पहले जो कैटेगरी सी वाला मसला था, जिसको बहुत जल्दी जो लोगों ने फील किया, सोशल मीडिया पे आ गया, इसकी इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने भी दी, आपने लोगों ने भी शेयर भी की, उसके बाद जो डेनमार्क को जो है वो सी कैटेगरी में डाल दिया गया, और बाकी जो ममालिक थे, हमारे पड़ोसी जो ममालिक थे, उनको सी कैटेगरी में नहीं डाला, और हमने आपसे एज ए कम्युनिटी फोरम, एज ए मीडिया आपसे रिक्वेस्ट की, और उसके बाद आपकी पूरी टीम जो है वो मुतहरक होगी। आप चूँकि आप टीम के कप्तान हैं, क्रेडिट तो डेफिनेट सारी टीम को जाता है, लेकिन कप्तान जो है, नाम जो है वो सामने कप्तान का होता है, तो मैं चाहूँगा जी हमारे सामाइन के साथ ये तफसील शेयर करें।
जी राज साहब, आपके इल्म में है कि आज से तकरीबन 1 महीना पहले हुकूमते डेनमार्क ने इस बात का ऐलान किया कि इनके यहाँ जो मिंक की जो फार्मिंग होती है उसके अंदर जो ये कोरोना का जो वायरस था वो इंसानों से पहले उन जानवरों के अंदर मुंतकिल हुआ, और फिर वहाँ पे उस वायरस के अंदर कुछ तब्दीली आई, और तब्दीली आने के बाद जो है वो वापस जो था उनसे, जानवरों से इंसानों में मुंतकिल हुआ। तो इनकी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस बात का जो है ऐलान किया कि ये अब चूंकि जो वायरस वापस जो इंसानों में मुंतकिल हुआ है, इसमें ये इस बात का इम्कान है कि ये इसकी शक्ल इस हद तक तब्दील हो गई है कि हो सकता है कि जो आगे आने वाली वैक्सीन्स हैं वो इनके ऊपर जो है शायद वो उस तरह से उसकी इफेक्टिवनेस ना हो जो जिसके लिए वो बनी है। तो इन्होंने इस बात का जो है वो इस पे तशवीश जो है इसका खुद इन्होंने इजहार किया कि ये एक खतरनाक सूरत हाल है जो पैदा हो रही है, और इसके लिए ज़रूरी है कि तमाम जितना ये मिंक फार्म हैं मौजूद इस मुल्क में उनको सबको जो है यानी उनका खात्मा करना जो है वो बड़ा ज़रूरी है। फिर ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जो वजीर खारजा येप्पे कोफ़ो हैं वो भी आए, और उनके साथ दूसरे जो एक्सपर्ट्स थे वो आए, और उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि जी इन्होंने ये फैसला किया है कि तमाम जो है मिंक उनको अब ये ख़त्म कर देंगे। तो जाहिर बात है इसके बाद जो थी वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस बात की तशवीश पैदा हुई, और ये खबर जो थी वो फैली दुनिया में, और कुछ ममालिक ने डेनमार्क के लिए जिसमें यूके सबसे ज़्यादा नुमाया है उन्होंने ये फैसला किया कि डेनमार्क के लिए जो है उनकी जो ट्रेवल रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको उन्होंने तब्दील किया। सो यूके के केस में उन्होंने ये कहा कि जी जो भी अब डेनमार्क से आएगा उसे 14 दिन के लिए करंटीना में जाना पड़ेगा। हुकूमत पाकिस्तान को भी इस बात की तशवीश हुई, और उन्होंने उस वजह से जो था, और ये इसकी बुनियादी वजह यही थी कि चूंकि हुकूमत डेनमार्क का ये अपना एक असेसमेंट थी कि ये बड़ी ये खतरनाक सूरत हाल है, तो उसी को फॉलो करते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने भी एक जो हम अपनी एक ٹریول ریسٹرکشن مختلف ممالک کے لیے رکھی تھیں, تو اس میں ڈنمارک کو جو تھا وہ ایک سی کیٹیگری میں اس کو ڈالا, اور جس کے اندر یہ صرف ایک آپ کہیں اضافی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ ٹیسٹ آپ کو آنے سے پہلے تو تقریباً سب ممالک سے ہی کروانا پڑ رہا ہے, لیکن آپ کو پاکستان پہنچ کر ایک اضافی جو ہے وہ ٹیسٹ کروانا پڑے گا. قرنطینہ کی اس کے اندر ریکوائرمنٹ نہیں تھی. تو اسی عرصے میں جیسے ہی یہ پچھلے جہاں تک مجھے یاد ہے پچھلے جمعے کی بات ہے, اس جمعے کو چھوڑ کے پچھلے جمعے کو جب یہ اناؤنسمنٹ ہوئی, خیر مجھے اندازہ تھا اس بات کا کہ اس فیصلے سے جو سب سے زیادہ جس پہ اثر انداز جو لوگ ہوں گے وہ ہمارے اپنے جو پاکستانی بھائی بہن ہیں, جو کیونکہ ان حالات میں اور تو کوئی ڈینش تو پاکستان ٹریول نہیں کر رہے, سو اگر یہ اس کی یعنی تکلیف اگر کسی کو ہوگی تو وہ ہمارے اپنے لوگوں کو ہوگی. راجہ صاحب نے بھی مجھے فون کر کے اور اس بات کا جو ہے مجھے اطلاع دی کہ لوگوں کے اندر اس کے بارے میں کافی تشویش پائی جاتی ہے, اور پھر میں نے اس پہ سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ ہم نے حکومت ڈنمارک کے جو مجاز دفاتر تھے ان سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ جی یہ آپ نے جو ایک مہینہ پہلے آپ نے جو صورتحال بیان کی تھی اس میں کوئی کیا تبدیلی آئی ہے, چونکہ اخباروں میں کچھ ایسی باتیں آنی شروع ہو گئی تھیں کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ درست معلومات کی بیسس پہ نہیں ہوا ہے, اور شاید یہ جو بھی وائرس میں تبدیلی آئی ہے وہ اس حد تک خطرناک نہیں ہے یا اس پہ مزید ریسرچ کی ضرورت ہے, سو آپ ہمیں ذرا اس پہ مزید گائیڈنس دیں کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے پھر ہمیں یہ گائیڈنس بتایا کہ جو ان کی ابتدا میں جو انہوں نے اسیسمنٹ کی تھی وہ غالباً درست نہیں تھی, اور اسی کی وجہ سے ہی حکومت ڈنمارک کے اوپر بھی کافی اس بات کی تنقید ہوئی کہ جی انہوں نے اس قسم کا فیصلہ جو لیا تھا وہ بہت جلد بازی میں لیا اور اس کو مزید اسٹڈی کرنے کی ضرورت تھی. تو جب ہمیں یہ اسیسمنٹ ملی تو ہم نے فوری طور پہ, اور یہ اگلا دن جو تھا وہ پیر کا دن تھا, پیر کے دن ہم نے جو تھا وہ پاکستان رابطہ کیا اور وہاں پہ ان معلومات کو شیئر کیا. تو مجھے بڑی اس بات کی خوشی ہے کہ وہاں پر بھی انہوں نے فوری طور پہ ہماری جو ریکمنڈیشن تھی اس کو جو تھا ملوز خاطر رکھا, اور پھر یہ 25 تاریخ جو ہے 25 نومبر پچھلے ہفتے میں بدھ کے دن جو تھا وہ ڈنمارک کو کیٹیگری سی سے جو تھا وہ نکال دیا. تو اب ہمارے پر وہی جو بھی پاکستان یہاں سے ڈنمارک سے پاکستان سفر افراد کریں گے تو ان کی جو ایئر لائنز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ کو جو ہے سفر کرنے سے پہلے ایک ٹیسٹ کا ریزلٹ نیگیٹو ریزلٹ کا جو ہے وہ انہیں اس دینا ہوگا, وہی ہے پاکستان جا کے کوئی اس پہ اب مزید جو ہے کسی قسم کی کوئی ٹیسٹ یا اور قرنطینہ کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے.
سفیر پاکستان, دوسری بات یہ ہے کہ جب یہاں سے ہم سفر کرتے ہیں یہاں کا نظام آپ نے دیکھا ہے کہ 96 آور کا وہ ویلڈ ہوتا ہے کرونا ٹیسٹ جو ہوتا ہے, پھر پاکستان اوور سی جب پاکستان سے واپس آتے ہیں تو یہی پروسیس جو ان کو کرنا پڑتا ہے چونکہ سیٹ کے معاملات ہوتے ہیں, اگر آپ کا پازیٹیو آ گیا تو آپ کی سیٹ گئی, پھر آپ کو سیٹ ملنی, چونکہ آپ لمیٹڈ پیریڈ کے لیے گئے ہوتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہت ساری جو سفر کرنے والا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. سفیر پاکستان, اگر کوئی آپ حکومت پاکستان کو لکھیں کہ کوئی ایک اسپیشل جو ہے کوئی سسٹم ہونا چاہیے اس ٹیسٹ کے لیے, چونکہ ان کی اس بات میں سیٹ کا مسئلہ بن جاتا ہے, اگر پازیٹیو آ گیا تو پھر ان کو 2 ہفتے پھر رکنا پڑ جائے گا, پھر ان کے لیے ٹیسٹ ہوگا, تو اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے.
جہاں تک میں آپ کا سوال پوچھا, دیکھیں اگر تو نیگیٹو ہے تو اس میں تو ظاہری بات ہے کہ کوئی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں اور آپ فوری طور پہ سفر کر سکتے ہیں. ہاں جہاں پازیٹیو آ جائے خدا نخواستہ تو وہ تو پھر آپ سمجھیں کہ ایسے افراد کو ویسے بھی ٹریول نہیں کرنا چاہیے, چونکہ آپ سے جو ہے مرض وہ دوسروں تک پھیل جاتا ہے, اور یہ بنیادی اس وقت جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ایئر لائنز کی ہے کہ ایئر لائنز نے یہ شرط اب رکھی ہے کہ آپ نیگیٹو ریزلٹ جو ہے وہ دیں اور اس کے بعد ہی وہ آپ کو جہاز بورڈ کرنے دیں گے, اس سے پہلے جو ہے وہ نہیں. تو इसमें एक जो मेरी यानी लोगों को मशवरा होगा कि हमें जो है अपनी एहतियाती जो तदाबीर हैं, आप इस वक्त दुनिया में ये जो वबा है उसकी आप कहते हैं कि जो सेकंड वेव है वो चल रही है, और उसमें एक बुनियादी वजह इस सेकंड वेव होने की यही है कि लोगों ने अपनी एहतियाती जो तदाबीर थी वो उस पर रिलैक्स हो गए, और जिसकी वजह से ये इतनी तेजी से दोबारा इन्फेक्शन फैलना शुरू हुआ है। तो पाकिस्तान की भी इस वक्त हम इसी सूरत हाल से दो चार हैं। पाकिस्तान में भी आपके इल्म में है कि वायरस काफ़ी तेजी से फैल रहा है। सो अब जो लोग यहाँ से अफराद यहाँ से ट्रेवल करके पाकिस्तान जा रहे हैं अपने अजीज व अकारिब से मिलने, तो उनको चाहिए कि वो अपनी हिफाजत खुद करें और तमाम जो सोशल डिस्टेंसिंग की या मास्क पहनने की हुकूमत पाकिस्तान की भी वहाँ पे जो तजावीज़ हैं उनके ऊपर अमल करें, ताकि वो ऐसी सूरत हाल से ना दो चार हों कि उन्हें वायरस हो जाए, और वायरस अगर हो जाए और उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए तो इसमें ये तो किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, फिर वो आपको उतना रुकना पड़ेगा जब तक कि आपके पास नेगेटिव रिपोर्ट ना आ जाए। ये हमें जारी बात है इस बात का एहसास करना चाहिए कि तमाम जो हुकाम हैं या एयरलाइंस हैं उनकी कोशिश यही है कि वो दूसरों सबकी जिंदगियों को महफूज रखें और इसको मर्ज को फैलने से रोकें। तो इसमें अवाम को भी तआवुन करने की जरूरत
है। सफीर पाकिस्तान, बिल्कुल आपकी 100% बात दुरुस्त है, अवाम को यही करना चाहिए, मुसाफिरों को यही करना चाहिए। मेरा जो सवाल है कि ये सारी चीज़ें अगर आपका पॉजिटिव आ जाता है तो दो हफ्ते, अगर आपको उसके बाद जब टेस्ट कराते हैं नेगेटिव आता है तो सीट जो है वो उसमें जो है प्रायोरिटी पर उस पैसेंजर को जो सीट जो है वो दी जाए।
सीट का तो अब ये है कि ये तो एयरलाइन चूँकि प्राइवेट है उसमें हुकूमत का तो जो है वो रोल नहीं आता। सीट जारी बात है कि जब तक एयरलाइन के पास जगह होगी तो वो आपको तो उन्होंने तो आपको टिकट बेचना है, वो ज़रूर आपको सीट जो है देंगे। बदकिस्मती से आपकी ये भी आपको मालूम है कि हमारी जो कौमी एयरलाइन है उसमें जब से पाबंदियाँ आयद हुई हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से, तो वो तो यूरोप के किसी भी जो है डेस्टिनेशन पे नहीं ट्रैवल कर रही। तो हम इसलिए हमारा इनसार जो है वो फॉरेन एयरलाइंस के ऊपर है जिसमें कतर एयरवेज या टर्किश एयरवेज वो ये है। तो सीट जारी बात है वो आपको सीट से इनकार तो नहीं करेंगे जब तक अगर उनके पास टिकट जगह मौजूद है, उन्होंने तो अपना टिकट बेचना है, वो आपको ज़रूर सीट देंगे। तो हाँ ये एक अनसर्टिनिटी इसमें हो जाती है कि अब आप कब होगा नेगेटिव, ये कुछ केसेस में बड़ा जल्दी नेगेटिव हो जाता है और कुछ लोगों के लिए उसमें वक्त लग जाता है। तो बहरहाल इसमें ये एक बड़ा मुश्किल इस वक्त है सूरत हाल जिसको हमने मिलजुल कर ही उसका सामना करना है।
सफीर पाकिस्तान, मिंक जो है इन पर अब खबरें आ रही हैं इनमें कोई इस तरह की बीमारी नहीं थी, वैसे ही उनको मार दिया गया। यहाँ डेनमार्क की वज़ीरे आज़म जब सामने मीडिया के सामने आई तो वो उनके आंसू निकल रहे थे, बड़ी परेशान थी कि मुझसे क्या हो गया है। तो यहाँ जो है उनके लिए उनसे जो है वो इस्तीफ़े का भी मुतालबा किया। चलें ये बात तो आगे चल पड़ी, निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता ये मसले मसाइल हल होते रहेंगे। अब सफीर पाकिस्तान, जब ये दवाई निकलेगी तो डेनमार्क ने कहा है कि ये हम जो है यहाँ के शहरियों को जो है मुफ्त जो है वो प्रोवाइड करेंगे। सफीर पाकिस्तान, ओवरसीज़ ने इतनी कुर्बानियाँ दी हैं तो क्या हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पूरे पाकिस्तान, ओवरसीज़ की बात नहीं करेंगे, पूरे पाकिस्तान में जहाँ अरबों की करप्शन हमें मीडिया पर बताई जाती है, खरबों रुपये जो इस तरह फलां प्रोजेक्ट में ज़ाया हो गए, स्टील मिल में पैसा ज़ाया हो गया, चीनी में लोगों ने पैसा बना लिया, तो क्या ये मूजी मर्ज की दवा जो है पाकिस्तान में मुफ्त नहीं देनी चाहिए?
देखें इस पर जो है हमारी जो महकमा सेहत और ख़ासतौर पर जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं सेहत के डॉक्टर फैसल सुल्तान, उन्होंने गुज़िश्ता चंद दिनों में कई दफ़ा मीडिया को आके ये बात बताई है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है इस वक्त एक हम अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं कि ये इसकी वैक्सीन जो है वो किन सोर्सेज से हासिल करेंगे और उसको लोगों तक जो है हम अफोर्डेबल कीमत पे कैसे पहुँचाएंगे। इसकी तफसीलात अभी तक जो है वो अभी जैसे हुकूमत के का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा उन कंपनीज के साथ जिन जो वैक्सीन बना रही है, तो उसके बाद हमें इन तफसीलात का मालूम होगा कि आया ये जो है बगैर यानी कॉस्ट के होगी, या अगर कोई कॉस्ट है तो वो कितनी होगी। तो इसके लिए कुछ हमें शायद चंद दिन के लिए मजीद इंतजार करना पड़े और ये तफसीलात जो हैं वो पब्लिक के सामने आ जाएंगी।
सफ़ीर पाकिस्तान, ये हमारा डेनमार्क, हमारी डेनमार्क कम्युनिटी फोरम का ये हमारा मुतालबा है, अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान तक, हुकूमत पाकिस्तान तक अगर आप पहुँचा दें।
जी जी बिल्कुल ठीक है।
सफ़ीर पाकिस्तान, बहुत सारी बातें हैं, चूंकि हम पाकिस्तान की सियासत की तो आपसे बात नहीं करेंगे, मैं चाहूँगा कि अब यहाँ डेनमार्क में जो हमारे जो ट्रेड हमारा बढ़ रहा है या कम हो रहा है कोरोना वायरस में, हम आगे गए हैं पीछे गए हैं, या हमारे जो तल्लुकात थे वो किस कहाँ पर खड़े हैं इस वक्त?
जी, डेनमार्क के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत बेहतरी आ रही है। और अभी पिछले ही हफ्ते की बात है कि एक हमारी सालाना आपस में हमारी जो है वो कंसल्टेशंस होती हैं इनके फॉरेन मिनिस्ट्री और पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री के दरमियान। तो 25 तारीख को वो मीटिंग हुई, वर्चुअल हुई। इसी पे तो क्योंकि ट्रेवल नहीं कर सकती थी डेलीगेशन, और उसमें बड़ी वो आप कहें कि मुस्बत जो था सारा आपस का में हमारे जो डायलॉग हुआ, और एक उसमें आपको जो एक अच्छी यानी खुशखबरी ये है कि हुकूमत डेनमार्क ने इस बात की रजामंदी जाहिर की है कि वो पाकिस्तान के साथ एक ग्रीन पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो साइन करेंगे, जिसके तहत ये जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी जैसे विंड एनर्जी है इनकी कंपनी वेस्टास, या और दीगर कंपनीज हैं जो रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज में काम करती हैं, वो पाकिस्तान में अपनी टेक्नोलॉजी लेकर जाएंगी। तो अब इस एग्रीमेंट के ऊपर इंशाल्लाह हमने काम अब शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अगले 5-6 महीने के अंदर ये एग्रीमेंट जो है वो हम साइन कर लेंगे। तो ये एक बहुत जो आप कह लें कि जो हमारा लेवल ऑफ कोऑपरेशन है डेनमार्क के साथ, जो अभी तक हमारी इस किस्म की उनके साथ कोई हमने तावुन और उस एग्रीमेंट नहीं अब तक की थी, तो ये एक सबसे पहला तो मैं ये कहूंगा कि जब से मैं आया था यहाँ पे 7 महीने हो रहे हैं मुझे, और मैं इस चीज़ की बहुत मैंने कोशिश की कि डेनमार्क के बहुत से ममालिक के साथ इस किस्म की एग्रीमेंट्स हैं और पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो ये हमें इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल हो रही है और इंशाल्लाह ये एग्रीमेंट हो जाएगी। दूसरा आपने तिजारत का पूछा, तो जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, हालांकि इस वक्त सारी दुनिया में कोरोना की जो सूरत हाल है उसकी वजह से तमाम दुनिया के ममालिक की जो मईशत है वो उस पर मनफी असर हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जितनी यहाँ पे कोशिश की तिजारत को फरोग देने के लिए, कम अज़ कम डेनमार्क में जो हमारी जितनी एक्सपोर्ट्स हैं वो पिछले साल यानी जब कोरोना नहीं था उसके मुकाबले में ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में ये हमारी बहुत बड़ी दूसरी कामयाबी है कि हमारा इनके साथ जो इकोनॉमिक तआवुन है और हमारी तिजारत उसमें इजाफा आ रहा है, और मुझे उम्मीद है कि ये इसी तरह से आगे चलता रहेगा।
सफ़ीर पाकिस्तान, हमें मालूम है कि आप जब से आए हैं और ये जो कोरोना वायरस में, आप कोरोना वायरस के दौरान ही आए और स्टिल कोरोना वायरस का दौर चल रहा है, और आप एक दिन भी जो है वो आराम से नहीं बैठे, और एक दिन भी हमारी एम्बेसी ने जो अपना काम रोका नहीं, सारे काम हमारे वीज़ा पासपोर्ट सारा सिस्टम चलता रहा, कहीं अगर रुकावट आ गई तो फिल फौर जो है वो इतला दी गई कि आज एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए ये मसला है तो एम्बेसी बंद होगी। ये तो सारे पॉजिटिव साइन है, और आपने ये भी ट्रेड का भी बताया। तो सफ़ीर पाकिस्तान, आने वाले दिनों में कोई ऐसी खुशखबरी है जो पाकिस्तानियों को दी जाए?
खुशखबरी तो मैंने आपको ये बता दी कि एक मेन तो यही है खुशखबरी कि हम जैसे जैसे हमारे इनके साथ मुआशी ताल्लुकात मजबूत होंगे तो उसके अंदर जो है आप हम पाकिस्तान की तरक्की के मजीद जो मौके हैं वो है। एक और चीज़ जिसके ऊपर मेरा बड़ा खास फोकस है वो ये है कि जो डेनमार्क और पाकिस्तान के जो तालीमी इदारे हैं उनके दरमियान जो है रवाबित पैदा हो। डेनमार्क ये यानी एक आप कहें कि दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो तालीम और टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस्ड है, और बहुत से जो आपके डेवलपिंग दुनिया के मुल्क हैं उन्होंने इसका फायदा उठाया है। अगर आप इनकी तारीख देखें तो इन्होंने चाइना की जो तरक्की हुई है पिछले 30 साल में, उसमें डेनमार्क का भी एक बड़ा अहम रोल है, और इनके तालीमी इदारों के साथ जो चाइनीज यूनिवर्सिटीज हैं उन्होंने उसका बड़ा फायदा उठाया है। तो मेरी ये भी कोशिश है कि तालीमी हमारी यूनिवर्सिटीज की इनकी एग्रीमेंट्स हों इनकी यूनिवर्सिटीज के साथ, जो इनकी आला अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, और हमारे तालिबे इल्म भी वहां से आए, या हम इनकी जो मिलके इनके साथ रिसर्च करें ताकि साइंटिफिक जो हमारी तरक्की है वो बेहतर हो सके। तो ये इंशाल्लाह कोशिश है। एक एग्रीमेंट हमने करवाई है यहाँ पे, इनकी एक ओडेंसे में एकेडमी है जो ये डेयरी से डील करती है, उसका एक पाकिस्तानी हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी साइंसेज लाहौर है, उनके साथ हमने ये पिछले हफ्ते ही एग्रीमेंट ये एक साइन करवाई है, और इसी तरह मेरी कोशिश है कि और यूनिवर्सिटीज के दरमियान भी हो, तो उसके लिए भी हम काविश कर रहे हैं।
दूसरा, सफीरे पाकिस्तान, यहाँ से अगर बच्चे जाते हैं जो डेनिश पाकिस्तानी शहरी हैं, अगर वो पाकिस्तान के ऐसे स्कूल हैं जहाँ वहाँ दाखिला मिलना मुश्किल होता है, तो एज ए ओवरसीज़ उनके लिए भी जो है वो मखसूस सीटें रखी जाएं और उनको भी दाखिला मिला जाए।
अच्छा, ये आप मुझे बताइएगा कोई अगर स्पेसिफिक केस हो ताकि हम उस पर कुछ देख सकें कि क्या किया जा सकता है।
सफीरे पाकिस्तान, आखिर में आप अपनी कम्युनिटी को कोई पैगाम देना चाहें?
जी, बस इंशाल्लाह ये जैसे मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे जल्द वैक्सीन जो है वो आ जाएगी डेनमार्क में अगले 1-2 महीने के अंदर, और अगर वैक्सीनेशन हो जाती है तो उसके बाद फिर ये है कि हमारा जो कम्युनिटी से राबता है उसमें मजीद बेहतरी आएगी, और आप लोगों के साथ आपकी साथ मिलके हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए इंशाल्लाह काम करेंगे।
सफीरे पाकिस्तान, आपसे एक रिक्वेस्ट की थी कि हम 25 दिसंबर का दिन कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का साला साल से मना रहे हैं, और आपसे मीटिंग के दौरान रिक्वेस्ट की थी कि ये दिन जो है वो पाकिस्तान अम्बेसी में मनाया जाए, लेकिन अब ये कोरोना वायरस का है तो इसका भी कोई हल निकालना चाहिए।
जी, वर्चुअल कोई चीज़ तो डेफिनेटली की जा सकती है एम्बेसी के अंदर या कहीं। आपको पता है कि जो इस वक्त रिस्ट्रिक्शंस हैं, उस वक्त फिजिकल फंक्शन तो हम कोई नहीं कर रहे, लेकिन वर्चुअल इवेंट जो है वो किया जा सकता है।
सफीर पाकिस्तान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम हमारे अपने सामाइन के साथ शेयर किया।
बहुत शुक्रिया आजाद साहब।
सफीर पाकिस्तान, आपकी पूरी टीम को हम मुबारकबाद पेश करते हैं, आपकी पूरी टीम, खासकर मैं कहूँगा ये आपकी फर्स्ट सेक्रेटरी साहब हैं और आसिफ साहब हैं। आसिफ साहब कम्युनिटी के साथ जो है वो एक अपने कप्तान की जेरे निगरानी बहुत A1 काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप।
ओके जी राय साहब, बहुत शुक्रिया।
सामान ये थे सफीर पाकिस्तान। सामान, इनसे हमने अवामी गपशप जो है वो लगाई है, उनसे सारी जो चीज़ें थीं, जो मौजूदा मसाइल थे छोटे बड़े जितने भी थे, कोशिश की है उनसे, क्योंकि वो हम उनसे सियासी बात, तो पहले जिस तरह हमने कहा था हम उनको सियासत की, पाकिस्तान की सियासत पर तो नहीं बात कर सकते, आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो आपकी मुश्किल हैं उस पर हम बात कर सकते हैं, तो हमने कोशिश की है। वैसे भी जब उनसे फ़ोन पर बात होती रहे तो ये बातें हम उनसे शेयर करते रहते हैं जो कम्यूनिटी के मसाइल होते हैं। तो समझ, कोई बात ऐसी नहीं है जो हम आपसे छुपा कर रखते हैं, सारी बातें हमारा वादा है, हम अपने सामाइन के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ, एज ए मीडिया भी, एज ए कम्युनिटी फोरम चेयरमैन जो मेरा हिस्सा बनता है, वो मैं कोशिश करता हूँ कि सारी चीज़ों को जो है वो आपके सामने रखें।